एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में जा रहे हैं जो पढ़ने वालों को अंदर तक हिला देता है, क्रिस बोहजालियन का मिडवाइव्स।
हाँ, क्रिस बोहजालियन, जिनका अर्मेनियाई मूल और अमेरिकी परिवेश है, वो अक्सर अपनी कहानियों में मानवीय रिश्तों और समाज के जो मुश्किल नैतिक सवाल होते हैं ना, उनको उठाते हैं।
और उनकी लेखनी की एक खास बात है उनका गहरा रिसर्च, है ना?
बिल्कुल, बहुत गहरा शोध। किरदारों को उनकी दुनिया को इतना प्रामाणिक बना देते हैं कि लगता है हम वही हैं। मिडवाइव्स में भी यही बात है। ये दाइयों की दुनिया में हमें ऐसे ले जाता है जैसे हम खुद वहां मौजूद हों। ये सिर्फ कहानी नहीं, इसमें सहानुभूति है, किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराई है और प्लॉट ऐसा कि आप किताब छोड़ ना पाएं।
बिल्कुल। और ये किताब आई थी 1997 में, फिर 1998 में ओपरा बुक क्लब में शामिल हुई और बहुत मशहूर हो गई। उस वक्त अमेरिका में एक बड़ी बहस भी चल रही थी।
हाँ, वो प्रसव को लेकर, कि बच्चे का जन्म अस्पताल में हो या घर पर दाई की मदद से।
सही। तो ये उपन्यास उस बहस का, उस सांस्कृतिक और चिकित्सकीय खींचतान का एक तरह से आईना बन गया।
हाँ, मतलब ये सिर्फ एक बेस्ट सेलर कहानी ही नहीं रही, इसने वाकई कुछ जरूरी सवालों पर एक पब्लिक बातचीत शुरू की। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े चुनाव, मेडिकल सिस्टम का अधिकार, जीवन मृत्यु जैसे बुनियादी मुद्दे।
तो आज हम इसी उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे, कहानी को समझेंगे, किरदारों के सफर को देखेंगे और वो जो नैतिक दुविधाएं हैं ना, जहां सही गलत एकदम धुंधला सा हो जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे।
ठीक है,
चलिए कहानी के उस मोड़ से शुरू करते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है।
कहानी हमें ले चलती है 1981 की सर्दियों में। जगह है वर्मोंट, अमेरिका का एक शांत ग्रामीण इलाका, बर्फीहा। हमारी मुख्य पात्र हैं सिबिल डैनफोर्थ, एक अनुभवी सम्मानित द ले मिडवाइफ, मतलब ऐसी दाई जिनका ज्ञान किताबी कम और तजुर्बे और जो पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर है उस पे ज्यादा आधारित है।
अच्छा।
सिबिल को प्राकृतिक प्रसव में गहरा विश्वास है, अपने समुदाय में बहुत सम्मान है उनका, अनगिनत बच्चों को उन्होंने घरों के आरामदेह माहौल में जन्म दिलवाया है।
माहौल और किरदार तो समझ आ गए, लेकिन कहानी का असली तूफान तो अभी आया नहीं है।
नहीं, वो तो अब आएगा। सोचिए, मार्च की एक रात है, बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा है,
उफ़।
बिजली चली गई है, सड़कें पूरी तरह बंद हैं और सिबिल एक बिल्कुल अलग थलग पड़े फार्म हाउस में फंसी हुई हैं, अपनी एक मरीज शार्लेट बेडफोर्ड उसके प्रसव के लिए।
और प्रसव मुश्किल हो जाता है?
हाँ, आसान नहीं होता। घंटों की मेहनत के बाद अचानक शार्लेट की हालत बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे स्ट्रोक आया हो। उसकी सांसें रुक जाती हैं, दिल की धड़कन बंद हो जाती है।
हे भगवान, एक दाई के लिए तो ये सबसे बुरा सपना साच होने जैसा है।
और मदद भी नहीं पहुंच सकती,
कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं। सिबिल को पूरा यकीन हो जाता है कि शार्लेट मर चुकी है, लेकिन एक और जिंदगी दांव पर है।
गर्भ में बच्चा।
हाँ, गर्भ में बच्चा, वो अभी जिंदा है पर उसकी धड़कन तेजी से गिर रही है। अब उस एक पल में सिबिल को एक फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर देगा।
क्या करती है वो?
बच्चे को बचाने की, कह सकते हैं, हताश कोशिश में वो रसोई में पड़े चाकू से एक इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करती हैं।
रसोई के चाकू से?
हाँ, और एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है, लेकिन माँ माँ नहीं बचती।
यहीं पर कहानी कांटे की तरह चुभने लगती है ना।
हाँ,
एक जान बचाने वाला कदम कैसे एक जुर्म का शक बन जाता है।
बिल्कुल। जब मदद पहुंचती है, सोचे वो क्या देखते हैं, एक मृत माँ और एक दाई जिसके हाथ में खून से सना चाकू है। अब बस एक ही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है जो पूरी कहानी की धुरी बन जाता है। सवाल ये कि क्या शार्लेट बेडफोर्ड उस वक्त मर चुकी थी जब सिबिल ने चीरा लगाया?
हाँ, अगर जवाब हाँ है तो सिबिल ने माँ के शरीर से बच्चे को निकालकर एक हीरो का काम किया।
और अगर नहीं, अगर शार्लेट की जिंदगी की कोई बहुत ही हल्की सी चिंगारी भी बाकी थी, चाहे वो एक आखिरी धीमी सांस ही क्यों ना हो,
तो फिर सिबिल का वो कदम बचाओ नहीं बल्कि अनजाने में की गई हत्या, यानी इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर माना जाएगा। और यहीं से शुरू होती है पूरी कानूनी कार्रवाई, जांच।
जांच में क्या होता है?
जांच करने वाले स्टेट ट्रूपर को शक होता है, फिर आती है ऑटोप्सी रिपोर्ट, शव परीक्षण, और उसमें एक बहुत अहम बात सामने आती है।
क्या?
शार्लेट के फेफड़ों में एक हल्की अंतिम सांस के निशान मिलते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में एगोनल गैस्प कहते हैं। ये वो सांस हो सकती है जो मौत के ठीक पहले या शायद तुरंत बाद ली जाती है।
तो ये सबूत शक को और गहरा कर देता है।
हाँ, कि शायद चीरा लगाते वक्त शार्लेट तकनीकी रूप से जीवित थी, और मामला यही नहीं रुकता।
और क्या होता है?
सिबिल की एक सहायक थी एनी, जो उस रात वहीं मौजूद थी। वो पुलिस को एक ऐसा बयान देती है जो सिबिल के खिलाफ जाता है।
अच्छा,
क्या कहती है वो?
वो कुछ ऐसा इशारा करती है कि सिबिल ने ऑपरेशन से पहले शायद पूरी तरह से जांच नहीं की थी कि शार्लेट वाकई मर चुकी है या नहीं। अब इस बयान से सिबिल की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
और फिर एंट्री होती है प्रोसिक्यूटर की।
हाँ, स्टीवन हेस्टिंग्स, एक महत्वाकांक्षी प्रोसिक्यूटर जो एक तरह से स्थापित मेडिकल और कानूनी व्यवस्था का प्रतीक है। वो सिबिल पर अनैच्छिक मानव वध का मुकदमा दायर कर देते हैं।
यही हमें दूसरे अहम किरदारों से भी परिचय होता है ना, सिबिल की बेटी और पति।
बिल्कुल, कॉनी डैनफोर्थ, सिबिल की 14 साल की बेटी, वो इस पूरी कहानी की नैरेटर है। उसकी आंखों से हम सब कुछ देखते हैं। और रैंड डैनफोर्थ, सिबिल के पति, एक बढ़ई, शांत रहने वाले, जो खामोशी से इस पूरे तूफान का सामना करते हैं।
इन किरदारों का जो सफर है वही शायद कहानी का दिल है। सिबिल का क्या होता है? सिबिल डैनफोर्थ का सफर बहुत दुखार है। सोचिए, एक सम्मानित आदर्शवादी दाई जिसे लोग पूछते थे, वो अचानक कटघरे में खड़ी है एक आरोपी बनकर। ये उसके लिए सिर्फ उस रात के फैसले का बचाव नहीं है, ये उसके पूरे जीवन के सिद्धांत, उसके विश्वासों की लड़ाई बन जाती है।
और ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं चल रही होती होगी, उसके अंदर भी तो चल रही होगी।
सबसे ज्यादा तो अंदर ही चल रही है। वो जो अंदर की कश्मकश है, क्या शार्लेट सच में मर चुकी थी, क्या मेरा फैसला सही था, ये अनिश्चितता, ये शक एक बोझ की तरह है जो धीरे धीरे उसकी पहचान को ही खत्म करने लगता है।
ये शक शायद उसे फैसले से पहले से ही रहा होगा।
शायद ये उपन्यास इस बात को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाता है। और फिर बेटी कौनी है, उसका सफर कैसा है, उसकी नजरों से कहानी देखना कैसा अनुभव है।
हाँ, कौनी की बात करते हैं।
कौनी तो कहानी का भावनात्मक केंद्र है। सोचिए, एक 14 साल की बच्ची जो अपनी माँ को अपना हीरो मानती है, उसे अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रही है, समाज की नजरों में गिरते हुए देख रही है।
बहुत मुश्किल रहा होगा उसके लिए।
बहुत।
उसे इस भयानक संभावना से जूझना पड़ता है कि शायद मेरी माँ गलत थी। ये घटना उसे वक्त से पहले बड़ा बना देती है। और विडंबना देखिए, वो आगे चलकर खुद एक डॉक्टर बनती है, एक प्रसूति विशेषज्ञ।
अच्छा, ये तो काफी विडंबनापूर्ण है।
हाँ, इस हादसे से सच, याददाश्त और प्यार को लेकर उसकी जो समझ है वो हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या हम कभी किसी घटना का पूरा सच जान सकते हैं, खासकर जब वो यादों और सदमे से गुजरा हो? कॉनी की कहानी इसी धुंधलेपन का सफर है।
और पिता रैंड, सिबिल और कॉनी की इस उथल पुथल में वो कहाँ खड़े होते हैं?
रैंड वो खामोश ताकत और अटूट वफादारी की मिसाल है। वो बिना कोई सवाल पूछे सिबिल के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मुकदमे का जो आर्थिक और भावनात्मक बोझ है, वो उनके रिश्ते पर, उनके परिवार पर कहर बनकर टूटता है। वो उस शांत स्थिरता के प्रतीक है जो ऐसे मुश्किल वक्त में चाहिए होती है।
इसके बाद कहानी पूरी तरह मुकदमे पर केंद्रित हो जाती है ना?
एक तरह का कोर्टरूम ड्रामा।
हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ सिबिल का मुकदमा नहीं रहता, ये एक बड़े सामाजिक मुद्दे का अखाड़ा बन जाता है।
कैसे?
पूरा समुदाय बढ़ जाता है, दोस्त, पड़ोसी, यहाँ तक कि वो मरीज जिनकी सिबिल ने पहले मदद की थी, वो भी पक्ष लेने लगते हैं। ये सिर्फ सिबिल का ट्रायल नहीं रहता, ये दाई प्रथा की वैधता पर सवाल बन जाता है। महिलाओं के अपने प्रसव के तरीके चुनने के अधिकार पर बहस छिड़ जाती है।
अच्छा,
अदालत में जैसे विज्ञान बनाम परंपरा की सीधी टक्कर देखने को मिलती है।
तो अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूटर हेस्टिंग्स सिबिल को किस तरह पेश करता है अदालत में?
हेस्टिंग्स की कोशिश होती है सिबिल को एक गैर लाइसेंसी अहंकारी प्रैक्टिशनर के तौर पर दिखाने की, कि उसने अपनी हदों से आगे जाकर भगवान बनने की कोशिश की। वो इस बात को उभारते हैं कि सिबिल के पास औपचारिक सर्टिफिकेशन नहीं था, वो अस्पताल के नियमों को नहीं मानती थी।
और सबूत के तौर पर
मेडिकल परीक्षक की गवाही और सिबिल की अपनी निजी डायरी के कुछ अंशों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, ताकि उसे लापरवाह साबित किया जा सके।
और बचाव पक्ष क्या करता है?
सिबिल के वकील टॉम टियर्नी।
टियर्नी की रणनीति होती है सिबिल को एक अनुभवी, देखभाल करने वाली पेशेवर के रूप में पेश करने की। वो कहते हैं कि सिबिल ने एक नामुमकिन स्थिति में बच्चे को बचाने के लिए एक वीरता भरा फैसला लिया।
उनकी मुख्य दलील क्या होती है?
उनकी मुख्य दलील होती है मौत के सटीक समय पर संदेह पैदा करना। वो तर्क देते हैं कि मेडिकल साइंस भी हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कोई भी 100% यकीन से नहीं कह सकता कि शार्लेट किस पल मरी।
और क्या सिबिल के इरादे मायने नहीं रखते?
तो मुकदमे का फैसला क्या आता है? क्या होता है सिबिल का?
अंत में जूरी सिबिल को मानव वध के गंभीर आरोप से तो बरी कर देती है।
ओ, तो बच जाती हैं वो?
हाँ, उस गंभीर आरोप से बच जाती हैं।
लेकिन
उन्हें बिना लाइसेंस के दवा का अभ्यास करने, प्रैक्टिसिंग मेडिसिन विदाउट अ लाइसेंस के हल्के आरोप में दोषी पाया जाता है।
तो जेल नहीं होती, लेकिन क्या इससे कोई असली राहत मिलती है? मतलब कानूनी जीत क्या भावनात्मक सुकून दे पाती है?
बिल्कुल नहीं। ये फैसला एक तरह की खोखली जीत साबित होता है। सिबिल की प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाती है, उनका करियर तबाह हो जाता है, परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से टूट जाता है। वो समाज से कट जाते हैं, मुकदमे का जो दाग है वो एक साए की तरह उनके साथ चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, सिबिल दोषी थी या निर्दोष, ये सवाल अनुत्तरित रह जाता है, न सिर्फ लोगों के मन में बल्कि खुद सिबिल के मन में भी। कानून अपना काम कर लेता है, पर एक गहरी भावनात्मक शून्यता बाकी रह जाती है।
लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, जैसा आपने कहा था, एक आखिरी परत बाकी है।
हाँ, एक अहम मोड़ बाकी है। कई साल बीत जाते हैं, कॉनी अब बड़ी हो चुकी है और जैसा हमने पहले बात की, वो खुद एक डॉक्टर है, प्रसूति विशेषज्ञ। और फिर एक दिन माँ और बेटी के बीच एक बहुत ही शांत लेकिन दिल को चीर देने वाली बातचीत होती है।
सिबिल आखिरकार वो राज बता देती हैं जो वो सालों से अपने अंदर दबाए हुए थी।
हाँ,
वो अपनी बेटी को बताती हैं कि इतने सालों से वो एक भयानक सच के साथ जी रही हैं। वो सच ये है कि वो खुद भी 100% निश्चित नहीं है और कभी नहीं हो सकती कि शार्लेट उस वक्त मर चुकी थी।
क्या मतलब, उसे यकीन नहीं था?
उसने माना था कि वो मर चुकी थी। उसने अपने सबसे बेहतर अंदाजे पर, अपने अनुभव पर भरोसा करके काम किया था, लेकिन शक का एक कीड़ा वो हमेशा उसके जहन में रहा, हर रोज उसे परेशान करता रहा। उसे यकीन था, पर वो यकीन कितना पक्का था, ये सवाल उसे जिंदगी भर सालता रहा।
ये कबूलनामा तो पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब ये उपन्यास कभी जवाब ढूंढने के बारे में था ही नहीं।
बिल्कुल सही, ये कबूलनामा साफ कर देता है कि उपन्यास का मकसद किसी एक निश्चित उत्तर तक पहुंचना था ही नहीं, बल्कि उस अनिश्चितता के भारी जिंदगी भर के बोझ के साथ जीने की कहानी कहना था। ये उस सवाल के साथ जीने की कहानी है जिसका शायद कोई जवाब है ही नहीं। और यहीं से उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं वो और भी गहरे होकर सामने आते हैं। पहला तो वही विज्ञान बनाम परंपरा वाला।
हाँ, स्थापित चिकित्सा पद्धति बनाम वैकल्पिक तरीके, अस्पताल बनाम घर पर प्रसव, डॉक्टर बनाम दाई। उपन्यास किसी एक को सही या गलत नहीं कहता, बल्कि दोनों व्यवस्थाओं की अपनी ताकत और अपनी सीमाओं को दिखाता है। ये सवाल उठाता है कि जन्म और मृत्यु जैसी प्रक्रियाओं पर आखिर किसका नियंत्रण होना चाहिए।
दूसरा अहम विषय है सत्य, स्मृति और अनिश्चितता का।
हाँ, कॉनी की पूरी कहानी उसकी यादों पर आधारित है, और यादें तो समय और अनुभव के साथ बदल सकती है ना।
और सिबिल का वो आखिरी कबूलनामा इस बात पर मुहर लगा देता है कि कुछ सच शायद हम कभी पूरी तरह जान ही नहीं सकते।
स्मृति तो वैसे भी बड़ी जटिल चीज है, हम अतीत को याद नहीं करते, हम उसे हर बार थोड़ा नया गढ़ते हैं।
बिल्कुल,
शायद सबसे ईमानदार स्थिति यही है कि हम अपनी अनिश्चितता को स्वीकार करें, बजाय इसके कि हम झूठी निश्चितता का दावा करें।
और फिर वो सवाल आता है नैतिक जिम्मेदारी का, खासकर संकट के समय में हम किसी के उन फैसलों को कैसे आंकें जो उसने इतने ज्यादा दबाव में लिए हों? क्या इरादा नतीजों से ज्यादा मायने रखता है?
सिबिल का वो एक फैसला, वो हमें इंसानी फैसलों की सीमाओं की याद दिलाता है। किसी दूसरे की जिंदगी अपने हाथों में लेने की जो भयानक जिम्मेदारी होती है, उसका एहसास कराता है। क्या हम किसी को सिर्फ उसके सबसे बुरे पल के आधार पर जज कर सकते हैं?
समाज और समुदाय की भूमिका भी बहुत उभर कर आती है, कैसे एक निजी दुख एक मीडिया सर्कस बन जाता है।
हाँ, और कैसे वही समुदाय जो कभी सिबिल का इतना सम्मान करता था, अब फुसफुसाने वालों और उंगली उठाने वालों की भीड़ में बदल जाता है। ये दिखाता है कि कैसे डर और पूर्वाग्रह, खासकर उनके प्रति जो मुख्यधारा से जरा हटकर होते हैं, किसी की इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं।
और अंत में माँ बेटी का रिश्ता, वो तो पूरी कहानी का भावनात्मक आधार है।
बिल्कुल, कॉनी की पूरी कहानी एक तरह से अपनी माँ को समझने की, उसे निर्दोष साबित करने की एक बेटी की कोशिश भी है। ये रिश्ता बहुत जटिल दिखाया गया है, माता पिता का आदर्शीकरण, फिर उनकी कमजोरियों और गलतियों का वो दर्दनाक एहसास, और फिर उन भयानक सच के बावजूद जो प्यार बना रहता है, वो सब कुछ है इसमें।
बहुत जालिन के लिखने की शैली भी इन विषयों को उभारने में मदद करती है, जैसे कॉनी का फर्स्ट पर्सन में कहानी सुनाना या सिबिल की डायरी के अंश।
हाँ, कॉनी की आवाज़ हमें सीधे उसके अनुभवों और भावनाओं से जोड़ती है। जबकि सिबिल की डायरी हमें मुकदमे से पहले और उसके दौरान उसके विचारों, उसके डर और उसके पेशेवर दर्शन की एक झलक देती है। ये दोनों नजरिए मिलकर कहानी को और ज्यादा परतदार बनाते हैं।
और फोरशैडोइंग का इस्तेमाल भी है।
हाँ, पूर्वाभास का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। कॉनी शुरू में ही बता देती है कि उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, तो रहस्य इस बात का नहीं रहता कि क्या होगा, बल्कि ये कि कैसे और क्यों होगा।
और प्रतीकवाद की बात करें तो जैसे बर्फीला तूफान या खून।
बर्फीला तूफान वो प्रकृति की उन ताकतों का प्रतीक है जो इंसान के काबू से बाहर हैं। किरदारों के अकेलेपन का और समय के उस जमे हुए पल का प्रतीक है जहां वो भयानक फैसला लिया गया। और खून, खून तो जीवन, जन्म और मृत्यु, घाव, हिंसा दोनों का प्रतीक है। क्या सिबिल का चाकू जीवन देने वाला था या जीवन लेने वाला? ये जो अस्पष्टता है, यही उपन्यास के बिल्कुल केंद्र में है।
पढ़ने वालों पर इसका क्या असर होता है, क्या महसूस होता है इसे पढ़कर?
एक बेचैनी सी महसूस होती है। पढ़ने वाला खुद को जूरी की कुर्सी पर पाता है जिसे अधूरे सबूतों और अपनी धारणाओं के बीच फैसला लेना है। सिबिल के लिए गहरी हमदर्दी पैदा होती है जो सच में एक नामुमकिन सी स्थिति में फंसी थी। अंत में कोई आसान जवाब या सुकून नहीं मिलता, बल्कि नैतिक जटिलता का एक गहरा एहसास रह जाता है।
और शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें आराम नहीं देता बल्कि सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, ये बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। अगर मैं होता, होती तो क्या करता, करती? हम दूसरों को कैसे जज करें जब हम उनकी हकीकत कभी पूरी तरह जान ही नहीं सकते? ये कानूनी, मेडिकल, सामाजिक व्यवस्थाओं पर हमारे भरोसे पर सवाल उठाता है और इंसानी भूलचूक के सामने उनकी क्या सीमाएं हैं ये दिखाता है। ये अपराध और निर्दोषता के बारे में हमारी बनी बनाई सोच को हिला देता है।
ये कहानी हमें शायद ये सिखाती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले वो होते हैं जहां सही और गलत के बीच की लकीरें मिट जाती हैं और जहां नेक इरादे भी भयानक नतीजों को जन्म दे सकते हैं।
और ये भी कि कभी कभी अनिश्चितता का बोझ उठाना, उसे एक सवाल के साथ जीना जिसका कोई जवाब नहीं है, वो किसी भी बाहरी सजा से कहीं ज्यादा भारी सजा होती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।